नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 143 को देखेंगे, जिसका विषय है सहायता के लिए दाऊद की आपातकालीन याचना। यह भी दाऊद की एक अनुपम प्रार्थना है। दाऊद कुछ नहीं छिपाता था और वह परमेश्वर से सब कुछ कह देता था। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 143 उसके एक पद को निकाल लीजिए, जहां पर लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। ध्यान दीजिए, दाऊद परमेश्वर की विश्वास योग्यता और धार्मिकता पर विश्वास करके उत्तर की प्रतीक्षा करता है। क्या विश्वासियों को पाप करने पर ऐसा नहीं करना चाहिए? पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे मित्रों, वह विश्वास योग्य और धर्मी है। दाऊद की नाई, हम भी उसकी विश्वास योग्यता और धार्मिकता के आधार पर प्रार्थना करें। यह एक अनुपम भजन है और आपके और मेरे अनुभवों में उचित ठहरता है। जी हाँ, यह इसराइल जाति की प्रार्थना भी है। विपदाओं में परमेश्वर से सहायता की पुकार करने पर यह उनकी आशा है। परमेश्वर उन्हें निराश नहीं करेगा। परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है। मीका कहता है 7 अध्याय के 20 पद में, तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइल पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया। परमेश्वर इसराइल का पक्ष क्यों लेता था? क्योंकि विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियों की पत्री में पौलुस इसराइल की समस्या को प्रकट करता है, जिसे हम 10 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। अन्य जातियों की भी यही समस्या है। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास में हैं। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को भेज दिया कि उनके पापों का दंड क्रूस पर भोगे। आप उसे प्रसन्न तभी कर सकते हैं जब आप उसके उस काम को स्वीकार करें जो उसने आपको आपके लिए दिए हैं। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 143 के 6 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं, अब दाऊद की पुकार है, जिसे आप सुने भजन संहिता 143 के 7 पद में, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर ही हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। दाऊद परमेश्वर से कहता है, मेरा सहायक केवल तू ही है। भजन संहिता 143 उसके 8 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर ही लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। इन पदों में परमेश्वर पर दाऊद का भरोसा प्रकट है कि वही उसका शरण स्थान और उसकी आशा है। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। जी हाँ, यह परमेश्वर की संतान की दैनिक प्रार्थना होना है। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 143 समाप्त होता है और अब हम भजन 144 में देखते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर जो है उसके लिए उसकी स्तुति और प्रार्थना। यह भी दाऊद का भजन है। इसकी विषय वस्तु का कुछ अंश भजन संहिता 18 में पाया जाता है, जो आरंभ में कहता है पद 1-2 में, हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसी भजन में आगे चलकर दाऊद कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मेरे प्रियो, यह भजन दाऊद के अनुभवों में से एक पर लिखा हुआ है, जब वह राजा शाऊल के हाथों से बचाया गया था। यह भविष्यवाणी से भी संबंधित है, जब इसराइल महाक्लेश के समय कष्ट उठाएगा, उस घोर कष्टों में वे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परंतु यह भजन सब पवित्र जनों से संबंधित भी है, जो दाऊद और महाक्लेश के बीच उत्पन्न होंगे। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 144 उसके एक पद को पढ़िए। लिखा है, धन्य है वह यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। दाऊद के कहने का अर्थ क्या है? कुछ लोग तुरंत कहेंगे कि पुराने नियम का परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, यदि आप दाऊद के युग में होते तो आप यह जानकर अत्यधिक राहत पाते कि आप चारों ओर उपस्थित बैरियों से सुरक्षित हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि प्रभु यीशु युद्ध के विरुद्ध था। निसंदेह वह मन को शांति देता है और पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति बनाता है। परंतु लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 21 पद में उसने कहा, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इस भजन में दाऊद भी यही कह रहा है और यह सच है कि हमारा प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। परंतु उसने स्पष्ट कहा है कि उसके फिर आने तक पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। भजन संहिता 144 के 2 पद में लिखा है, वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसकी भलाई है। यदि आपकी और मेरी धार्मिकता है तो वह मसीह है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसका करुणा निधान, उसका रक्षक, उसका गढ़, ऊंचा स्थान, उसका छुड़ाने वाला और उसकी ढाल है। भजन 144 के 3 में लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। सच तो यह है कि मनुष्य का मूल्य अधिक नहीं है। भजन संहिता 144 के 4 में लिखा है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। मनुष्य तो सांस के समान है, अर्थात परमेश्वर के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। उसके बिना जीवन निरुद्देश्य है। एक बार एक मनुष्य मेरे पास बंदूक लेकर के आया और कहने लगा, यदि आप मुझे जीने का कारण नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा, आप मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, मैं ऐसा कोई कारण नहीं जानता कि आप आत्महत्या न करें। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि आत्महत्या करके आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप केवल यही कर पाएंगे कि इस पृथ्वी पर से अपनी समस्या हटाकर वहां ले जाएंगे जहां समाधान नहीं है, क्योंकि इस प्रकार आप अपनी अनंत नियति निश्चित कर लेंगे। परंतु यहां आप परमेश्वर के लिए कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपके जीवन में उद्देश्य उत्पन्न हो और आप उसका अंत करने की शीघ्रता न करें और मरने के बाद आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास चले जाएं। मेरे मित्रों, परमेश्वर से रहित जीवन खोखला होता है। मेरे पास समाचार पत्र का वह पृष्ठ रखा है जिसमें एक मनुष्य के पास 250 करोड़ रुपए थे, परंतु उसने आत्महत्या कर ली। उसका धन उसे रोक नहीं पाया। अब दाऊद की प्रार्थना को सुने। भजन संहिता 144 उसके 5 पद में वो कहता है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। परमेश्वर द्वारा मानवीय इतिहास में हस्तक्षेप की पुकार, इसकी पुष्टि यशाया नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 1 और 2 पद में की गई है। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। एक दिन परमेश्वर अवश्य मानवीय इतिहास में हस्तक्षेप करेगा। मैं यह नहीं कहता कि वह कल या इस शताब्दी में करेगा, परंतु यह अवश्य ही करेगा। भजन संहिता 144 के 6 पद में लिखा है, बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। जब प्रभु यीशु फिर आएगा तो वह न्याय करेगा। संपूर्ण धर्मशास्त्र नया नियम भी प्रकट करता है कि प्रभु यीशु एक दिन न्याय करने के लिए आएगा। इसका चित्रण हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से अधिक सजीव नहीं हो सकता, जहां यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला और अपने श्वेत सिंहासन को देखा। उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यह प्रभु यीशु है जो विजयी के रूप में जीतने आ रहा है। आपको शायद यह पसंद नहीं आएगा, परंतु यह परमेश्वर का वचन है। तब भजनकार कहता है, भजन 144 के 9 पद में, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन करूंगा। मेरे प्रियो, महाक्लेश के अंत होने तक इसराइल इस नए गीत को नहीं गा पाएगा। यहाँ पर भजन संहिता 144 समाप्त होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 145, जिसका विषय है परमेश्वर जो है और जो करता है उसकी स्तुति। यह अंतिम भजन है जो दाऊद के नाम से जाना जाता है। संभवतः उसने वे भजन भी लिखे जिनके लेखक का नाम अज्ञात है, परंतु हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। यह भी वर्णमाला का भजन है, अर्थात प्रत्येक पद वर्णमाला के अक्षरों से आरंभ होता है। मेरे प्रियो, अब यहाँ एक समस्या आती है कि इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षर हैं और इस भजन में केवल 21 पद हैं। इस भजन का आरंभ पहले अक्षर आलेप से होता है और अंत ताओ अंतिम अक्षर से होता है। इसमें एक अक्षर की कमी है, नून की। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि नून अक्षर लिपिकों की भूल से छूट गया है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा है। मेरे विचार में उसे छोड़ने के पीछे एक निश्चित कारण है। भजन संहिता 145 से 150 तक के प्रत्येक भजन हालेलुया भजन है। यह लगातार शिखर की ओर बढ़ते हैं। भजन 145 में एक पद क्यों छोड़ा गया? मेरे विचार में इस सत्य को प्रकट करने के लिए कि हमारी स्तुति अधूरी रहती है। इस विषय में एक W. ग्रांट ने लिखा है, मेरा निष्कर्ष यह है कि इस अंतर का उद्देश्य हमें स्मरण कराना है कि अन्य वाणियों के बिना स्तुति पूरी नहीं है, और ये वाणियां कलीसिया और स्वर्गवासी पवित्र जनों की है। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 तक संपूर्ण हालेलुया सुन पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1, 3 और 6 पद में, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। वहां हालेलुया नहीं है। भजन 145 में स्तुति अधूरी है और न ही अन्य किसी भजन में है। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने कहा, लुकार्चित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 14 पद में, आकाश में परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था और शांति होगी, परंतु शांति नहीं आई। हम अभी भी यानी अभी तक हालेलुया गान प्रवीणता से गाना नहीं सीखे हैं। परंतु एक दिन मसीह इस पृथ्वी पर लौट आएगा। वह दिन एक महान दिन होगा और उस दिन हल्लेलुया गान सही और पूर्ण रीति से होगा। भजन संहिता 145 उसके एक और दो पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यह स्तुति का एक अनुपम भजन है। जी हाँ, भजन संहिता 145 उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर दयालु है। दाऊद ने परमेश्वर की दया का अनुभव किया था और वह परमेश्वर की इस दया से प्रेरित अन्यों को भी इसका अनुभव करवाना चाहता था। भजन 145 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। बहुत से लोग परमेश्वर के हाथ बांधते हैं। यह एक कारण है कि वे कलीसियाई अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, परंतु उसके साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार से बचते हैं। धर्म सुधार जो हमारे सामने सबसे महान सिद्धांत को लाया है, वह था विश्वासियों का याजक होना। यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो आप सीधे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो परमेश्वर आपको उद्धार का निमंत्रण देता है। परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? मेरे प्रिय, भजन संहिता 145 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम भजन 146 में आते हैं, जिसका विषय है हल्लेलुया भजन, परमेश्वर की भलाई के लिए स्तुति। इस महान भजन संग्रह के अंतिम 5 भजन सब हल्लेलुया भजन हैं। ध्यान दीजिए कि वे यह की स्तुति करो से आरंभ होते हैं और यह की स्तुति करो ही से समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है हल्लेलुया। वे सताव और कष्टों के बारे में कुछ नहीं कहते। इनमें बैरी से मुक्ति या सहायता की प्रार्थनाएं नहीं है, न ही इनमें प्रतिशोध की प्रार्थनाएं हैं। पाप और कष्ट की रात का अंत हो गया है, रोना समाप्त हो गया है और सहस्त्र वर्षीय राज के भोर के साथ आनंद आ गया है। देखिए भजन संहिता 30 उसके 5 पद में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। भजन 146 के 1 पद में लिखा है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। हमें अपने होठों से ही नहीं, अपने मन की सच्चाई से उसकी स्तुति करना है। भजन 146 उसके 3 पद में आगे लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। डॉक्टर गबलिन ने एक रूढ़िवादी यहूदी की भेंट का उल्लेख किया है। उसने कहा कि उसने नया नियम पढ़ा है और उसमें देखा कि प्रभु यीशु को अनेक स्थानों पर मनुष्य का पुत्र कहा गया है। उसने कहा कि पुराने नियम में चेतावनी दी गई है कि मनुष्य के पुत्र पर भरोसा न करना। हमने उसे संदर्भ मांगा तो उसने इसी भजन का संदर्भ दिया, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। हमने उसे समझाया कि यदि हमारा प्रभु यीशु केवल मनुष्य का पुत्र होता और कुछ नहीं, यदि वह इमानुएल नहीं होता जो कुंवारी से उत्पन्न परमेश्वर का पुत्र था, यदि वह यशायाह की भविष्यवाणी का उत्पन्न पुत्र और बालक नहीं होता, तो उसमें उद्धार की शक्ति नहीं होती। परंतु वह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे उद्धार के लिए मानव देह में आया। उसका विवाद यहूदियों के अंधेपन को प्रकट करता है। इस भजन में कहा गया है कि मनुष्य पापी है और मनुष्य से आशा नहीं की जा सकती। वह सीमित प्राणी है और मिट्टी में लौट जाता है। केवल एक ही है जिसमें उद्धार और मनुष्य की हर आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमता है, वह है याकूब का परमेश्वर, प्रेमी यहोवा। इस भजन के अंतिम पदों में यहोवा शब्द 8 बार आया है। भजन 146 उसके 5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। भजन 146 के 9 और 10 पद में लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। यहोवा होने के नाते वह मुक्तिदाता है। सृजनहार होने के कारण वह एलोहीम है। भजन इसे अति स्पष्ट करते हैं कि यह की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, भजन संहिता 146 भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब भजन 147 में देखेंगे, जिसका विषय है पृथ्वी और यरूशलेम के प्रति परमेश्वर की भलाई के लिए हालेलुया गान। भजन 147 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। यह अभी पूरा नहीं हुआ है, इसकी पूर्ति भविष्य में होने वाली है। भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जी हाँ, महाक्लेश से उभरने वालों के लिए परमेश्वर ऐसा करेगा। मेरे प्रियो, वह आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। भजन 147 के 4 पद में लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। यहाँ पर कैसा अंतर है। हमारे टूटे दिलों की सुधि लेने वाला परमेश्वर वही है जो सितारों की संख्या ही नहीं उनका नाम भी जानता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है। भजन 147 उसके 12 से 14 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरे सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। राजा प्रभु यीशु शांति का राजा यरूशलेम आ गया है। इस समय यशाया की भविष्यवाणी पूरी होगी। यशाया 54 उसके 11 से 13 पद में, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिले, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्ची कारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश मैं मणियों से, तेरे फाटक लालियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। भजन 147 उसके 20 में आगे लिखा है, किसी और जाति से उसने ऐसा वर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। इसराइल जाति अद्वितीय है, केवल उन्हें ही चुना गया है, अर्थात चुनी हुई प्रजा का पद दिया गया है। केवल उन्हें ही परमेश्वर के प्रकाशन का संरक्षक बनाया गया है। वचन में परमेश्वर कहता है कि उनके लिए उसके पास अनंत उद्देश्य है। हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना है, उस समय के लिए जब परमेश्वर उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 147 समाप्त होता है और अब हम भजन 148 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर के सब बुद्धि जीवों द्वारा स्तुति। इस भजन में यहोवा की स्तुति स्वर्ग में आरंभ होने का आह्वान है। जब परमेश्वर के सब स्वर्गदूत और पृथ्वी के बुद्धिजीवी उसकी स्तुति करेंगे तो यह कैसा हालेलुया गान होगा। मेरे प्रियो, भजन 148 उसके 1 से 3 पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। स्तुति का आरंभ सर्वोच्च तीसरे स्वर्ग में होता है, जिसमें विश्वासी भी सहभागी हैं। भजन 148 उसके 11 से 13 पद में लिखा है, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसके बुद्धिजीवी स्वर्ग में ही नहीं पृथ्वी पर भी उसकी स्तुति करेंगे। यह चरम सीमा पर पहुंच रही है जब स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करेंगे। भजन संहिता 148 यहाँ समाप्त होता है। अब हम भजन 149 में देखेंगे जिसका विषय है स्तुति गान, क्योंकि राज्य लहू द्वारा मुक्ति से और न्याय सामर्थ्य से आते हैं। भजन संहिता 149 उसके एक पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, यहवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। प्रिय श्रोता मित्रों, हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त नए गीत के विषय में देखा है। यह नया गीत उस तथ्य के विषय में होगा कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। तो आइए हम भजन 149 उसके दो पद को पढ़ें। इसराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वह हमारा मुक्तिदाता है और हम इससे स्मरण रखें। वह हमारा सृजनहार भी है, इस कारण हमें उसकी स्तुति करना है। हम पहाड़ पर चढ़ते समय, समुद्री किनारे पर टहलते समय उसकी स्तुति कर सकते हैं। हमें हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा या बस यात्रा करते समय हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वह सबसे उत्तम स्थान होता है। यहाँ ध्यान दें कि अन्य जातियों का न्याय निश्चित है। भजन 149 उसके 6-9 पद में लिखा हुआ है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दे और उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। मेरे मित्रों, हम स्मरण रखें कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएगा तब संसार की जातियां उसका स्वागत नहीं करेंगी। वह इस पृथ्वी का न्याय करेगा। इस छोटे से ग्रह पर आकर वह विद्रोह का दमन करेगा और लोहे के डंडे उन्हें तोड़ेगा, जैसा भजन 2 में लिखा है, पद 9 में भी, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। ओह मेरे मित्रों, हम धोखा ना खाएं कि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। हम जिस संसार में वास करते हैं वह न्याय के दिन की ओर अग्रसर है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और आशीषें प्राप्त की है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे एवं सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है की रचना। मैंने पूछा क्यों